लेकिन उनकी तरह किसी का हक मारकर इकट्ठा नहीं किए मैंने, उसका इशारा साफ था। और जहां तक ज्वेलरी की बात है, मैंने नहीं चुराई, फैजान ने बिना झिझक कहा। जरूर माहिरा नहीं चुराई होगी, मुझसे पहले वही वहां थी। बस ये सुनना था कि अरमान गुस्से में खड़ा हो गया। तुम मेरी फैमिली पर चोरी का इल्जाम लगा रहे हो, उसकी आवाज गूंज उठी। पहले मेरी माँ और अब मेरी बहन। अगले ही पल उसने फैजान का कॉलर पकड़ लिया। कमरे का माहौल पूरी तरह भड़क चुका था। अरमान, सादिया चिल्लाते हुए आगे बढ़ी ही थी कि तभी नूर भी वहां आ गई। उसने आते ही सब कुछ सुन लिया था। ये क्या कर रहे हो तुम अरमान, नूर ने घबराकर कहा और जल्दी से फैजान को छुड़ाने लगी। फैजान ने भी खुद को छुड़ाने की कोशिश में अरमान को जोर से धक्का दिया। मैंने कुछ नहीं किया, मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगा रहा, फैजान गुस्से में बोला। उसकी आंखों में दर्द साफ दिख रहा था। तभी रेहान गुस्से से खड़ा हो गया। ये चोरी का मामला है, पुलिस को बुलाना पड़ेगा। वो फैजान की तरफ बढ़ा, लेकिन नूर ने बीच में आकर उसका हाथ पकड़ लिया। प्लीज ऐसा मत करो, नूर की आवाज कांप रही थी। सादिया एक कोने में खड़ी रो रही थी, मगर कुछ बोल नहीं पा रही थी। वो सच जानती थी, ज्वेलरी की चोरी फैजान ने नहीं की थी और ना ही उसका ऐसा कोई इरादा था। लेकिन अब कहानी कुछ और ही मोड़ ले चुकी थी। नूर ने मजबूती से रेहान का हाथ पकड़ा हुआ था। रेहान ने एक पल के लिए उसकी तरफ देखा और फिर फैजान को छोड़ दिया। उसका हाथ अब भी नूर के हाथ में था। उसे अच्छा लग रहा था, लेकिन अंदर कहीं ये बात भी चुभ रही थी कि नूर ने फैजान का साथ दिया। चारों तरफ सन्नाटा था, सब लोग बस खड़े तमाशा देख रहे थे। तभी सादिया आगे बढ़ी, आंसू उसके गालों पर बह रहे थे। देखो फैजान, मुझे पता है तुम ऐसे नहीं हो, तुम चोरी नहीं कर सकते, उसने कांपती आवाज में कहा। लेकिन अगर गलती से तुम्हारे पास वो ज्वेलरी या पैसे आ गए हैं तो प्लीज बता दो, मैं सब संभाल लूंगी। नूर ने धीरे से सादिया की तरफ देखा। फैजान ने चोरी नहीं की है, अचानक रेहान की आवाज गूंजी। सबकी नजरें एक साथ उसकी तरफ उठ गईं। ये वही रेहान था जो अभी कुछ देर पहले पुलिस बुलाने की बात कर रहा था, और अब अचानक उसका लहजा बदल चुका था। असल में उसने ये बात इसीलिए कही थी क्योंकि नूर ने ऐसा कहा था, और इस वक्त वो पूरी तरह नूर में ही उलझा हुआ था। उसका हाथ अभी भी नूर के हाथ में था। दिल में अजीब सी हलचल थी। तो फिर किसने की है, जुबैदा बेगम ने हैरानी से पूछा। कमरे में सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें अब रेहान पर टिक गई थीं। नूर को अचानक अजीब सा महसूस हुआ। उसने झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया। रेहान ने उसकी तरफ देखा, एक पल के लिए जैसे सब कुछ थम गया हो। फिर उसने नजरें फेर लीं। चोर का पता खुद लगाओ, उसने ठंडे लहजे में कहा। मुझसे मत पूछो कि ज्वेलरी कहाँ गई। इतना कहकर वो कमरे से बाहर चला गया। रेहान, रेहान, सादिया घबराकर उसके पीछे भागी। कमरा अब और भी भारी हो चुका था, जैसे हर दीवार पर शक और खामोशी चिपक गई हो। अरमान, रेहाना बेगम और जुबैदा बेगम सब एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था। चलो, रेहाना बेगम ने धीरे से कहा। उन्होंने नूर का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ कमरे से बाहर ले गईं। अब कमरे में सिर्फ जुबैदा बेगम, अरमान और फैजान रह गए थे। कुछ पल की खामोशी के बाद फैजान ने सबकी तरफ देखा। उसकी आंखों में चोट भी थी और गुस्सा भी। फिर बिना कुछ कहे वो भी वहां से चला गया। रात काफी हो चुकी थी। बाहर जाने का उनका पार्टी प्लान कैंसिल हो चुका था। घर में अजीब सी खामोशी थी। हर कोई अपने अपने कमरों में चला गया था। रेहान सीढ़ियों से ऊपर जाता हुआ छत पर आ गया। शायद वो अपनी फीलिंग्स किसी को दिखाना नहीं चाहता था। वो चुपचाप खड़ा था। उसकी नज़र बार बार अपने हाथ पर जा रही थी। आज नूर ने उसका हाथ पकड़ा था। उसे एक स्पर्श ने उसके अंदर अजीब सी हलचल मचा दी थी। रेहान, पीछे से आवाज आई। वो पलटा। रेहाना बेगम उसके पास आ चुकी थी। आज नूर ने अच्छा किया, वरना तुम फैजान को सच में मार बैठते, उन्होंने शांत आवाज में कहा। रेहान ने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन, रेहाना बेगम आगे बोली, जो स्टैंड सादिया को अपने भाई के लिए लेना चाहिए था वो नूर ने लिया। रेहान की आंखों में हल्की सी हरकत हुई। उसने तुम्हारा हाथ तक पकड़ लिया, अगर तुम उसका हाथ छटक देते तो? रेहान हल्का सा मुस्कुराया, मगर उसमें उलझन थी। मैं उसका हाथ कैसे छटक देता मॉम, रेहाना बेगम ने गहरी नजर से उसे देखा। हाँ, सही बात है, तुम उसका हाथ कैसे छटक देते? कुछ पल दोनों चुप रहे, फिर उन्होंने धीरे से कहा, तुम लोगों की पहचान करना जानते हो रेहान, और फैजान ऐसा लड़का नहीं है। रेहान ने सिर हिलाया। और अगर उसे चोरी करनी ही होती तो वो नेकलेस उठाता, झुमके तो उतने कीमती भी नहीं थे। सही कह रही हैं आप, रेहान ने धीमे से कहा। असल में जिस तरह चाची जान ने कहा, मुझे लगा वो सही कह रहे हैं, इसीलिए गुस्से में आकर मैंने फैजान का कॉलर पकड़ लिया, उसकी आवाज में पछतावा साफ था। रेहाना बेगम के चेहरे पर नाराजगी आ गई। और सादिया, उसे कोई जिम्मेदारी लेना ही नहीं आता, न तुम्हारी न तुम्हारे सामान की। उनकी आवाज में गुस्सा था। एक बार भी अपने भाई के हक में नहीं बोली। कम से कम ये तो कहते कि फैजान ऐसा नहीं है, उन्होंने आगे कहा। और वैसे भी ज्वेलरी संभाल कर रखनी चाहिए थी, ऐसे खुले कमरे में कौन छोड़ता है? घर में काम करने वाले भी आते हैं। कुछ देर तक दोनों के बीच खामोशी छाई रही। फिर रेहान ने धीरे से कहा, छोड़िए मॉम, छोटी सी बात के लिए घर का माहौल खराब नहीं करना चाहिए। लेकिन उसके चेहरे पर साफ था, ये बात उसके अंदर कहीं गहराई तक बैठ चुकी थी। और शायद ये मामला भी खत्म नहीं हुआ था। नूर भी अपने कमरे में आ चुकी थी। वो बिस्तर पर बैठी हुई थी, लेकिन उसका मन कहीं और ही उलझा था। बार बार उसके दिमाग में फैजान और सादिया का चेहरा घूम रहा था। सच तो ये था, सादिया ने अपने भाई का साथ नहीं दिया था। लेकिन ये भी सच था कि फैजान को किसी की बातों से फर्क ही नहीं पड़ा। उसे चोट लगी थी, लेकिन उसने दिखाया नहीं। नूर ने गहरी सांस ली। आखिर सच क्या है, वो खुद से बुदबुदाई। उधर जुबैदा बेगम ने गुस्से में अपने शौहर नासिर खान को फोन लगाया। सुनिए, आपके बेटे फैजान ने, वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि तभी माहिरा तेजी से अंदर आई। उसने झटके से फोन उनके हाथ से लेकर काट दिया। आपको किसने कहा था फैजान पर इल्जाम लगाने के लिए, माहिरा ने तेज आवाज में कहा। जुबैदा बेगम हैरान रह गई। तुम्ही ने तो कहा था कि वो वहां था, माहिरा ने गहरी सांस ली। फिर बोली, मैं तो बहुत कुछ कहती हूँ मॉम, लेकिन आप सिर्फ वही सुनती हैं जो आपको सुनना होता है। उसकी आंखों में घबराहट भी थी और गुस्सा भी। असल में वो सच जानती थी, फैजान जैसा भी था लेकिन चोर नहीं था, क्योंकि ज्वेलरी उसी ने छुपा कर रखी थी सादिया के कमरे में, सिर्फ उसे नीचा दिखाने के लिए। लेकिन अब मामला उसके हाथ से निकल चुका था और इल्जाम फैजान पर लग चुका था। कभी तुम ही कहती हो उसे तलाक चाहती हो और आज उसे बचा रही हो, जुबैदा बेगम ने शक भरी नजर से कहा। माहिरा कुछ बोलती उससे पहले ही, यहाँ क्या हो रहा है? अरमान कमरे में आ चुका था। उसने माहिरा की आखिरी बात सुन ली थी। माहिरा सीधा उसके सामने आकर खड़ी हो गई। पहले तुम बताओ, तुमने फैजान पर हाथ क्यों उठाया? अरमान ने नजरें फेर ली। इस बात को छोड़ो। नहीं, माहिरा ने सख्ती से कहा, ये बात इतनी आसान नहीं है। कमरे में तनाव बढ़ गया। उसके पास पैसे कहाँ से आए, अरमान ने सवाल किया। माहिरा हल्का सा हंसी, जहां से भी आए हों, लेकिन चोरी उसने नहीं की, उसकी आवाज में पूरा यकीन था। और तुम भी जानते हो, घर के खर्चों में से कोई 3 लाख बचा सकता है क्या? अरमान चुप हो गया। और अगर सच में उसके पास इतने पैसे होते, माहिरा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तो वो छुपाता नहीं, अपना हक समझकर सामने रखता। अरमान के पास कोई जवाब नहीं था।
कुछ पल खामोशी रही।